الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس آیت کے پہلے حصے کا ثم احیاہم تک اس کا تو ترجمہ اور تشریح بھی ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس پر ہم جتنے بھی سوچے تو بات بڑی عجیب سمجھ میں آتی ہے. انسان کے بارے میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لربه لقنوت، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اور انسان جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا. یہ اندازہ کر لے کہ جیسے اگر کوئی شخص مجھے 100 روپے دے دے اور پھر 100 روپے کے بعد پر مجھے کہے کہ اچھا اس میں سے 250 روپے مجھے دے دیا کرو، میں آپ کے فائدے کے لیے لگا لیا کروں گا. تو اب یہ جو شخص ہے جس کو 100 روپے دے دیے، اس سے 250 روپے اسی کے فائدے کے لیے اگر وہ لے رہا ہے تو اس پر وہ کیا سمجھے؟ ناراض ہو جائے یا خوش ہو جائے؟ وہ جو 250 روپے ہے، وہ جو لگانا ہے اس کا طریقہ اس کو خود نہ آتا ہو، بلکہ جو لے رہا ہے صرف اسی کو آتا ہو، اور وہ اس کی ایسی ضرورت ہو کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہو بعد میں. تو آپ بتاؤ کہ کیا یعنی اس پہ خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ یہ مثال زکوٰۃ کی ہے. دیا ہوا مال اللہ کا ہے. اب اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کما لیا تو یہ اپنے لیے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا سوچے کہ اگر اللہ پاک کی مدد نہ ہوتی تو یہ کما سکتا تھا. یعنی ہم خود دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کہ سامنے آمنے سامنے دکانیں ہوتی ہے، ایک کا دکان چلتا ہے دوسرے کا نہیں چلتا، ایک کا کام ہوتا ہے دوسرے کا نہیں ہوتا، ایک کا علاج ہوتا ہے دوسرے کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے کام ہو رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہمارے کام ہو ہی نہیں سکتے. سب سے بڑا دھوکہ تو پہلے یہ کہ میں نے کمایا ہے، یہ قارونی دھوکہ ہے. قارون کو بھی یہی دھوکہ ہوا تھا. اس نے کہا تھا میں نے اپنے علم و ہنر سے یہ خود کمایا. تو یہ دھوکہ بھی کہا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے جو مجھ سے لیا جا رہا ہے یہ گویا کہ مجھ پہ زیادتی ہے، مطلب یہ کہ اس پہ تنگ ہو رہا ہے، دل تنگ کر رہا ہے. तो ये चीज़ जो है ना ऐसी है कि जो इंसान को साबित कर रही कि बेवकूफ़ है, मतलब ना समझे इन्नल इंसान ले रब भी लकन, बेशक इंसान जो है ना बड़ा ही ना शुक्र है। फिर दूसरी बात यह कि हम गलतियों पे गलतियां करते हैं लेकिन अल्लाह जल्ला शानो हमारी उन गलतियों को ठीक कर दें, हमारी सेहत की बुनियाद पे देखें कितनी बदपरहेजी होती है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में ऐसे दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है कि उसको ठीक करते रहते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह जल्ला शानो तो बहुत ज़्यादा फजल फरमाने वाले हैं। हम टोकरों पर टोकरे खाते हैं अपने अमाल की वजह से और अल्लाह पाक फिर उनको दुरुस्त कर फरमाते हैं, या फोन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह माफ़ करते हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ों पे पकड़ते हैं उस पे इंसान चीख उठता है। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फजल फरमाने वाले हैं लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अब अक्सर को देखो 84% लोग काफिर हैं कम अज़ कम, तो अक्सर तो हो गया ना। यानी इंसान जो है ना इस बात का सोचते ही नहीं कि मैं कैसे आया हूं। जो एथियस्ट है उनके तो खैर कहने ही मेरे ख्याल में वो है कि आदमी हैरान हो जाता है कि वो खुद बड़े बड़े साइंसदान होते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि ये सारी दुनिया कैसे खुद बहुत पैदा हो गई। खुद बहुत कौन सा काम होता है? अगर कोई तो है ना जिसने पैदा किया, तो वो जो कोई है वो अल्लाह है ना। हाँ जी, तो सब कुछ अल्लाह पाक देते हैं लेकिन इंसान मैं अब अल्लाह पाक अब जंग के बाद और अल्लाह के रास्ते में जंग करो और यकीन रखो कि अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। यानी जो अल्लाह जल्ला शानू से बागी लोग हैं और वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर उनके साथ जंग करो। अब इस वक्त रशिया और यूक्रेन में लड़ाई है, दोनों काफिर हैं, उनमें जो मर रहे हैं उनका क्या है, बस वैसे जा रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों की लड़ाई होती है किसी काफिर के साथ तो काफिर तो वैसे ज़ाया होता है अगर मर जाता है और मुसलमान शहीद हो जाते, तो मुसलमान को तो हर चीज़ में फ़ायदा ही फायदा है। तो ये मतलब यह है कि इस पर हमें अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक ने हम सबको बहुत नवाजा है और हर चीज़ में नवाजते हैं। कौन है जो अल्लाह को अच्छी तरह तरीके पर कर्ज दे ताकि वो उसे उसके मफाद में इतना बढ़ाए चढ़ाए कि बदर जहाज ज़्यादा हो जाए। देखो ये वही बात है, यानी अल्लाह जल्ला शानू ने हमें माल दिया और फिर फरमाया अल्लाह ताला को कर्ज दो। तो अल्लाह पाक को तो कर्ज मतलब जो है ना वो ज़ाहिर हम दे ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह पाक को तो ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो ये है कि जो हमसे ले रहा है वो हमारे लिए ले रहा है, वो हमारे लिए ले रहा है ताकि हमारे बाद में काम आए। तो अल्लाह को कर देने से मुराद अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है, इसमें गरीबों की इमदाद भी दाखिल हो और जिहाद के मकासद में खर्च करना भी। इसे कर्ज मजाजन कहा गया है क्योंकि इसका बदला सवाब की सूरत में दिया जाएगा और अच्छे तरीके का मतलब यह है कि इखलास के साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दिया जाए, दिखावा या दुनिया में बदला लेना मकसूद ना हो। अब मैंने अर्ज़ किया ना कि हम लोग धोखा खाते हैं, तो पहले धोखा का तो मैंने जिक्र किया कि मतलब लोग समझते हैं शायद हमने किया। दूसरा बात है कि ये भी अपने आप को धोखा देते हैं कि हम समझते हैं कि शायद कोई और हमें दे सकता है सिवाय अल्लाह के। अब देखो एक तरफ अल्लाह है जो हमें सब कुछ दे रहा है, दूसरी तरफ इंसान है जो हमें कुछ भी नहीं दे रहा, और अगर कुछ दे रहे हैं तो वो भी अल्लाह का दे रहा है। अब मिसाल के तौर पर किसी स्टोर पर कोई आदमी मतलब जो है ना वो कड़ा हो और आप उससे कुछ मांगे और मालिक ने उसे कहा हो कि अच्छा आपसे अगर कोई कुछ मांगे मैं स्टोर से लेकर दे दिया करो, ठीक है ना। अब जब उससे आप मांगते हैं और वो आपको स्टोर से देते हैं तो किसने दिया? हाँ जी, उस मालिक ने दिया ना। अगर उसको इजाजत न देता तो कौन, मतलब क्या वो दे सकता था? तो दिया तो मालिक ने। अब यह कि उसके मतलब उसको कहा इजाजत दिए, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकता। तो दुनिया में जो माल है वो भी तो अल्लाह का दिया हुआ है। जब अल्लाह का दिया हुआ है तो अगर कोई आपको दे रहा है तो वो तो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, तो इसका मतलब हर सूरत में अल्लाह ही दे रहा है। तो अब बताओ कि कोई भी आपको अल्लाह के अलावा कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता। तो जब ये वाली बात है, देखो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई नहीं है ना, यानी अल्लाह के बाद जो है मखलूक में कोई नहीं है। तो आप स्वयं फरमाते इन नमन अलकासम अल्लाह युती, बेशक मैं तकसीम करने वाले अल्लाह पाक अता फरमाने वाले। तो इसका मतलब है कि इंसान जितने भी अगर किसी का लिए खैर का जरिया बन रहे हैं वो तकसीम करने वाले, देने वाले ज़ात अल्लाह ताला की है। तो अब ये बात है कि मैं अगर खुश करने की का इरादा करूं तो किसको खुश करूं? ज़ाहिर उसको खुश करूंगा जो मुझे दे रहा है, तो दे तो मुझे अल्लाह ही रहा, तो लिहाजा मैं उसी, इस वजह से हर हाल में उसी के लिए काम करूं। बस मैं बयान कर रहा हूं, अगर मैं समझूं कि भाई ये मुझे अच्छा बयान करने वाला कह दे तो मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये करूं कि अल्लाह पाक इस पर राजी हो जाए तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो ये इतना सा काम है, बस अपने दिमाग की कुछ एक रुख इस तरफ करना है कि इसके लिए नहीं इसके लिए, बस इतनी सी बात है। तो दूसरा धोखा ये है कि इंसान दूसरों से समझता है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो इस पर फिर ये बात होती है रिया और दिखलावा। अल्लाह पाक हमारी हिफाज़त फरमाए। तो रिया और दिखलावा से, और अगर जात के लिए किसी गरीब की मदद के तौर पर कर्ज ही दिया है तो उसमें इस पर किसी सूद का मुतालबा ना हो। कुफार अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए सूद पर कर्ज लेते थे, मुसलमानों को ताकीद की गई कि अव्वल तो कर्ज की बजाय चंद दें, और अगर कर्ज ही दे तो असल से ज़्यादा का मुतालबा न करें, क्योंकि अगरचि दुनिया में तो इन्हें सूद नहीं मिलेगा लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उसका सवाब, अल्लाह ताला उसका जो सवाब देगा वो असल से बदरजात ज़्यादा अता फरमाएंगे। जहाँ तक उस खतरे का तल्क, इस तरह खर्च करने से माल में कमी हो जाएगी, इसके जवाब में फरमाया गया कि तंगी और रुसत अल्लाह ही के कब्ज़े में है। जो शख्स अल्लाह के दीन की खातर अपना माल खर्च करेगा अल्लाह ताला इसको तंगी पेश नहीं आने देंगे, बशर्ते वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करें। और ये बात बिल्कुल वाज है कि जो अपना हाथ खुला रखते हैं उनको अल्लाह पाक खुला देते हैं, जो तंग करते हैं तो उनके ऊपर तंग की जाती है। अल्लाह पाक हम सबको वो नसीब फरमाए जिस पर अल्लाह पाक राज़ी हो, और आफियत हो, मतलब जो है ना दोनों जहाँ की कामयाबी नसीब फरमा दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।